पिछले अध्याय में आपने देखा कि सानवी ने आर्यन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और काम पर वापस आ गई। इस बीच कीर्ति अपनी कॉलेज ट्रिप पर गई। इस अध्याय में इंदर की बहन जेसिका उससे मिलने आती है। जेसिका अब विक्रांत कपूरिया से शादी कर चुकी है। इंदर से विक्रांत को परिवार में शामिल करने और जैसे मिलने की अनुमति देने का आग्रह करती है। हालांकि इंदर इनकार कर देता है और जय की भलाई को सबसे ऊपर रखता है। इस बूच विक्रांत कपूरिया जय के शेयरों को हथियाने के लिए जय की कस्टडी पाने की योजना बनाता है। नाउ नेक्स्ट। वकील के ऑफिस से निकलते हुए विक्रांत कपूरिया के चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे उसने कोई बड़ी बाजी जीत ली हो। उसके पीछे उसका असिस्टेंट जीवन चल रहा था, जो विक्रांत का सबसे वफादार आदमी था और उसकी हर चाल का हिस्सा। गाड़ी के पास पहुंचकर जीवन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। विक्रांत धीरे धीरे पास वाली सीट पर बैठा और खिड़की से बाहर देखते हुए हल्की हंसी हंसने लगा। आर्यन राजवंश, उसने धीरे धीरे लगभग फुसफुसाते हुए कहा, तुम सोच रहे हो कि जय तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें उसकी कस्टडी मिल जाएगी और साथ ही राठौर कंपनी के सारे शेयर्स पर तुम्हारा कंट्रोल होगा, मगर ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब तुम्हारा सामना मुझसे है, मैं तुम्हें हर हाल में मात दूंगा। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। वो आगे झुककर बोला, मानो अपने दिमाग में पूरा खेल बुन रहा हो। ये सिर्फ कस्टडी की लड़ाई नहीं है जीवन, विक्रांत ने कहा, ये पावर की लड़ाई है। जय मेरे लिए एक चाबी है, उस तिजोरी की जिसमें राठौर फैमिली की आधी दौलत और ताकत बंद है। अगर वो चाबी मेरे हाथ में आ गई तो ये पूरा साम्राज्य मेरा हो जाएगा। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। जीवन, मुझे आर्यन राजवंश की हर चीज पर नजर चाहिए। वो क्या खाता है, क्या पीता है, उसकी लाइफ में कौन है, सब बता करो। मैं उसकी हर कमजोरी जानना चाहता हूँ। और हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड या कोई भी लड़की जो उसकी लाइफ में है, उसे भी ट्रैक करो। हर डिटेल चाहिए ताकि सही वक्त पर हम उसे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। जीवन ने बिना सवाल किए सिर हिलाया। जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा सर, मैं आज से ही उस पर काम शुरू करता हूँ। विक्रांत ने पीछे सीट पर आराम से सिर टिकाया और आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई बड़ा मास्टर प्लान उसके दिमाग में धीरे धीरे आकार ले रहा हो। अब खेल शुरू होगा, उसने खुद से कहा। मैं आर्यन को नीचे गिरा कर रहूंगा और जब तक मेरे हाथ में जय की कस्टडी और उसके 25% शेयर्स नहीं आ जाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये प्रॉपर्टी, ये पावर, ये सब मेरा होना चाहिए। और जब मैं ये सब हासिल कर लूंगा, तब राजवंश और राठौर दोनों फैमिली को समझ आ जाएगा कि असली विजेता कौन है। गाड़ी सड़क पर दौड़ पड़ी। विक्रांत की मुस्कान और गहरी हो गई। उसके लिए ये लड़ाई सिर्फ कस्टडी की नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम था और वो हर हाल में जीतना चाहता था। अगली सुबह सानवी जल्दी उठ गई थी। उसने नहा धोकर खुद को तैयार किया और अपना सूटकेस भी पैक कर लिया था। आज से वो आर्यन राजवंश के घर रहने जा रही थी और उसे पता था कि वहां जाने के लिए उसे अपने कपड़े, जरूरी सामान सब साथ लेकर जाना होगा। पैकिंग खत्म करने के बाद उसने अपनी बहन कृति को फोन लगाया। वो खुश थी और कृति को बताना चाहती थी कि उसने आखिरकार आर्यन के साथ काम कर रही है और अब वो उनके घर रहने जाएगी। फोन कई बार बैल गया लेकिन कृति ने नहीं उठाया। काफी देर बाद आखिरकार कृति ने फोन उठाया। सानवी ने राहत की सांस ली और कहा, मैं कब से आपको फोन कर रही हूं, आप उठा क्यों नहीं रही थी? कृति की आवाज चिढ़ी हुई थी। दीदी प्लीज, हम लोग ट्रिप पर आए हुए हैं, रात देर तक घूम रहे थे, अब हमारा सिर दर्द कर रहा है, मुझे सोने दो, बाद में बात करेंगे, सानवी ने थोड़ा रुक कर कहा। ठीक है, पर मैं आपको बताना चाहती थी कि मैंने, कृति ने उसकी बात काट दी। प्लीज अभी नहीं, बाद में सुन लूंगी, ये कहकर कृति ने फोन काट दिया। सानवी थोड़ी हैरान और हल्की परेशान हुई, लेकिन उसने सोचा कि कृति को आराम की जरूरत होगी, इसलिए उसने बात वहीं खत्म कर दी। असल में कृति ने सानवी से सच छिपाया था। वो किसी कॉलेज के ट्रिप पर नहीं नई थी, बल्कि अपनी सहेली के साथ एक लड़के के साथ घूमने गई थी। वो लड़का उनके सभी खर्चे उठा रहा था। इस वक्त कृति एक 5-स्टार होटल के लग्जरी रूम में थी। कृति हमेशा से ही एक लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। महंगे कपड़े, ब्रांडेड पर्स, खूबसूरत होटल्स में ठहरना, महंगी कारों में घूमना, यही उसका सपना था और इन सब के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसके लिए रिश्तों की इज्जत या सही गलत से ज्यादा मायने रखता था पैसा। सानवी को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बहन की ये आदतें आने वाले वक्त में कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। कृति की ये चमक दमक भरी लाइफस्टाइल और उसका पैसे के लिए हर हद पार करने का जुनून आगे चलकर सानवी की जिंदगी में एक ऐसा तूफान ला देगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सानवी इस वक्त सिर्फ इतना सोच रही थी कि वो एक नई शुरुआत करने जा रही है। आर्यन राजवंश के घर में रहना उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय होगा। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में कृति के फैसले उसकी अपनी जिंदगी को कितना हिला देंगे। क्या हुआ, उसने फोन काट दिया, रिया ने जिज्ञासा से पूछा। सानवी ने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ काट दिया, मुझे पता है जब उसे पैसे की जरूरत नहीं होती तब वो मुझसे लंबी बातें नहीं करती, मुझे उसकी आदतें अच्छी तरह पता हैं।
रिया ने ठंडी सांस ली। सही कह रही हो। वह सानवी ने हल्की मुस्कान के साथ बात टाल दी, लेकिन मन में उसे बुरा लगा। चल छोड़ इन सब बातों को, आज तो कॉलेज भी नहीं जा रही मैं। मैं सीधे आर्यन राजवंश के घर जा रही हूँ, उसने अपना छोटा सा सूटकेस उठाते हुए कहा। रिया ने सूटकेस पर नजर डाली और चिढ़ाने के अंदाज में बोली, बस इतना सा सामान? अरे लड़की, तुम एक राजकुमार के महल में रहने जा रही हो, थोड़ा और स्टाइलिश कपड़े रख लो, ऐसे मत जाओ कि लगे तुम हॉस्टल शिफ्ट हो रही हो। सानवी ने उसे घूरा। रिया, मैं वहाँ छुट्टियाँ मनाने नहीं जा रही, मैं वहाँ काम करने जा रही हूँ। ये इतना आसान नहीं है, और वैसे भी मैं थोड़े ही दिनों के लिए जा रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे सामान मंगवा लूँगी, रिया ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। काम करने जा रही हो, लेकिन अगर तुम्हें वहाँ का महल, वहाँ की लाइफस्टाइल और सबसे बढ़कर वहाँ का राजकुमार यानी आर्यन पसंद आ जाए तो? सानवी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। रिया हंसने लगी। अरे मजाक कर रही हूँ, पर सोचना, अगर तुम दोनों का जम जाए तो फिर मैं तुम्हारी शादी की सारी तैयारी करूंगी, तुम्हें ड्रीम वेडिंग दूंगी। सोचो जरा, तुम दुल्हन के लिबास में और आर्यन घोड़ी पर, कितना परफेक्ट लगेगा। सानवी ने उसे तकरीबन घूरते हुए कहा। बस करना रिया, अभी तुम्हें काम के लिए जा रही हूँ, शादी विवाह की बातें बाद में करना, रिया ने हंसते हुए कहा। ठीक है मैडम, पर मैं फिर भी दुआ करूंगी कि तुम वही सेटल हो जाओ, आखिर हर रोज तो राजकुमारों से मिलने का मौका नहीं मिलता। सानवी चाह कर भी मुस्कुरा दी। रिया की यही आदत थी, चाहे वो गुस्से में हो या परेशान, रिया कुछ ऐसा कह देती कि सानवी का मूड हल्का हो जाता। दोनों सहेलियां बचपन से ही एक दूसरे की हर सुख दुख की साथी थी। रिया को सानवी की हर आदत पता थी और सानवी को रिया की हर कमजोरी, इसलिए रिया उसे खुलकर छेड़ सकती थी, और सानवी भी जानती थी कि उसके पीछे रिया का प्यार और फिक्र छुपी है। सानवी अपना सूटकेस लेकर बिल्डिंग से नीचे आई। सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बिल्डिंग के सामने एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। ये इंदर की गाड़ी थी। सानवी ने पहले भी उसे फोन किया था, लेकिन उस वक्त इंदर ने कॉल नहीं उठाई थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, इंदर बाहर निकला। उसकी नजर जैसे ही सानवी पर पड़ी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इंदर को लग रहा था कि शाम भी उसके घर शेफ के रूप में काम करने के लिए मान जाएगी। क्या सानवी का आर्यन के घर में काम फिर से शुरू करना कहीं किसी नए रिश्ते की शुरुआत तो नहीं?
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सेल कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।